अध्याय 46 आशीष और श्राप। यह अध्याय यहोशु 8 पर आधारित है। आकान पर दंडादेश के क्रियान्वयन के पश्चात यहोशु को योद्धाओं का संचालन करने की और ए प्रदेश के विरुद्ध अग्रसर होने का आदेश दिया गया। परमेश्वर का सामर्थ्य उसके लोगों के साथ था और उन्होंने जल्द ही ए को अपने अधिकार में ले लिया। सामरिक गतिविधियां तब स्थगित कर दी गईं ताकि सभी इजरायली एक पवित्र धार्मिक समारोह में संबद्ध हो सके। लोग कनान में उपनिवेश प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। अभी तक उनके पास अपने परिवारों के लिए भूखंड या घर नहीं थे और इन्हें प्राप्त करने हेतु उन्हें कनानियों को बाहर भगाना आवश्यक था। लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य को आस्थगित करना उचित था क्योंकि उन्हें इससे श्रेष्ठतर कर्तव्य पर पहले ध्यान देना था। अपनी धरोहर का स्वामित्व लेने से पूर्व उन्हें परमेश्वर के साथ अपनी सत्यनिष्ठा की वाचा को दोहराना था। मूसा द्वारा दिए गए अंतिम निर्देशों में परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति औपचारिक मान्यता के लिए शेकेम में एबाल और गिरिजीम पर्वतों पर गोत्रों के दीक्षांत समारोह के लिए 2 बार निर्देश दिए गए थे। इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए इज़राइल की सारी मंडली, केवल पुरुष ही नहीं वरन स्त्रियां, बाल बच्चे और उसके साथ रहने वाले परदेसी लोग गिलगल में अपने डेरे छोड़कर अपने शत्रुओं के देश में से होकर शेकेम की घाटी पहुंचे, जो प्रदेश के बीच में थी। हालांकि वे अपराजित शत्रुओं से घिरे हुए थे, जब तक वे परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे वे परमेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षित थे। अब जैसे कि याकूब के दिनों में उनके चारों ओर नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से भय समा गया। उत्पत्ति 35:5 और इब्रियों को सताया नहीं गया। इस विधिवत धर्म किया के लिए नियुक्त स्थान उनके पूर्वजों के साथ उसके संबंध के कारण पहले से ही पवित्र था। यही पर अब्राहम ने कनान में यहोवा के लिए पहली वेदी खड़ी की थी। अब्राहम और याकूब दोनों ने अपने तंबू यहीं गाड़े थे। यहीं पर याकूब ने वह खेत खरीदा जिसमें गोत्रों को यूसुफ के मृत शरीर को मिट्टी देनी थी। यहीं पर वह कुआ था जो याकूब ने खोदा था, और ओक का वह वृक्ष जिसके नीचे उसने अपने घराने की मूर्ति पूजक आकृतियों को गाड़ा था। चुना हुआ स्थान पूरे फिलिस्तीन के सबसे सुंदर स्थानों में से एक था और इस भव्य और प्रभावशाली दृश्य के अभिनीत होने के लिए मंच होने योग्य था। वह सुंदर घाटी, जैतून की वृक्ष वाटिकाओं से छितराए हुए हरे मैदान, बहते झरनों से निकली नदियों से तरित और अद्भुत फलों से रत्न जड़ित बंजर पहाड़ों के बीच लुभाते हुए फैली हुई थी। तराई में आमने सामने एबाल और गिरिजीम लगभग एक दूसरे के बिल्कुल समीप है, और निचले पर्वत स्कंध स्वाभाविक उपदेश मंच सा रूप देते प्रतीत होते हैं, जहां एक पहाड़ से बोले गए शब्द दूसरे पहाड़ पर स्पष्ट सुनाई देते हैं और पीछे की पहाड़ी ढाल विशाल जनसमूह के लिए स्थान प्रदान करती है। मूसा के निर्देशानुसार एबाल पर्वत पर बड़े बड़े पत्थरों का स्मारक खड़ा किया गया था। पलस्तर के प्रावरण से पहले से तैयार इन पत्थरों पर व्यवस्था लिखी हुई थी। न केवल सीनै पर्वत पर बोली गईं और पत्थर की पटियाओं पर उत्कीर्ण की हुई 10 आज्ञाएं, लेकिन मूसा को संचारित किए गए और उसके द्वारा पुस्तक में लिखे गए नियम भी। इस स्मारक के समीप अपरिष्कृत पत्थर की एक वेदी बनाई गई थी जिस पर परमेश्वर के लिए बलि की भेंट चढ़ाई जाती थी। यह तथ्य कि वेदी को एबाल पर्वत पर खड़ा किया गया, वह पर्वत जो शापित था, महत्वपूर्ण था। यह दर्शाते हुए कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण इज़राइल पर परमेश्वर का प्रकोप न्यायसंगत था और बलिदान की वेदी पर दर्शाए गए मसीह के प्रायश्चित के अभाव में यह उसी समय भुगतना पड़ सकता था। गोत्रों में से 6 गोत्र लिया और राहेल के वंशज थे और ये गिरिजीम पर्वत पर ठहरे थे। और जो दासियों से उत्पन्न हुए थे उन्होंने रूबरेन और जेबुलून सहित एबाल पर्वत पर स्थान ग्रहण किया, और संदूक उठाने वाले याजकों ने बीच की घाटी का स्थान लिया। संकेतक तुरही के स्वर द्वारा शांत हो जाने की घोषणा की गई और फिर संपूर्ण निस्तब्धता में विशाल सभा की उपस्थिति में पवित्र संदूक के पास खड़े हुए यहोशु ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने से मिलने वाली आशीषों को पढ़कर सुनाया। गिरिजीम पर स्थित सभी गोत्रों ने आमीन कहकर उत्तर दिया। फिर उसने श्रापों को पढ़ा और एबाल पर्वत पर ठहरे गोत्रों ने इसी प्रकार सहमति दी। सैकड़ों आवाजें एक मनुष्य के स्वर समान इस औपचारिक उत्तर के लिए मिल गए। इसके बाद मूसा द्वारा उन पर प्रकट किए गए अधिनियम और दंडादेशों सहित परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा गया। इज़राइल ने सिने पर्वत पर व्यवस्था को प्रत्यक्षतः परमेश्वर के मुंह से प्राप्त किया था और उसके अपने हाथों से लिखे गए व्यवस्था के पवित्र सिद्धांत अभी भी संदूक में संरक्षित थे। अब उन्हें दोबारा लिखा गया था जहां उन्हें सब पढ़ सकते थे। सभी को कनान पर स्वामित्व को बनाए रखने से संबंधित वाचा के प्रतिबंधों को स्वयं देखने का विशेषाधिकार प्राप्त था। सभी को वाचा के नियमों से सहमत होने को प्रकट करना था और आशीषों और श्रापों के पालन या उपेक्षा के संदर्भ में अपनी सहमति देनी थी। व्यवस्था को केवल स्मारक पत्थरों पर ही नहीं लिखा गया, वरन समस्त इज़राइल के सुनने के लिए स्वयं यहोशू द्वारा पढ़ा गया। कुछ ही सप्ताह पूर्व मूसा ने लोगों को उपदेश देते समय व्यवस्था विवरण की पूरी पुस्तक दी थी, लेकिन फिर भी यहोशू ने व्यवस्था को दोबारा पढ़ा। व्यवस्था के पढ़े जाने को केवल इज़राइली पुरुषों ने ही नहीं वरन सभी स्त्रियों और बाल बच्चों ने भी सुना, क्योंकि यह आवश्यक था कि वे अपने कर्तव्य को जानें और उसका पालन करें। अपने नियमों से संबंधित परमेश्वर ने इज़राइल को आदेश दिया था, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम दे और तुम इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाना, जिससे कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। प्रत्येक सातवें वर्ष पूरी व्यवस्था को समस्त इज़राइल की सभा में पढ़कर सुनाया जाना था, जैसे कि मूसा ने आज्ञा दी थी। सात वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष की धार्मिक किया में झोंपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इज़राइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हों, तब यह व्यवस्था सब इज़राइलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर रहने वाले परदेसी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकस रहें, और उनके बच्चे जो ये बातें नहीं जानते वे भी सुनें, और जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो, परमेश्वर यहोवा का भय मानना सीखें। शैतान परमेश्वर की कही बातों को विकृत करने, समझ को अंधकारमय और विवेक को अंधा कर मनुष्य को पाप में ले जाने के प्रयत्न में सर्वदा कार्यरत रहता है। इसी कारण यहोवा इतना सुस्पष्ट है और अपनी अपेक्षाओं को इतना प्रत्यक्ष बना देता है कि कोई भी गलती नहीं करे। परमेश्वर मनुष्य को अपनी सुरक्षा की छत्र छाया में खींचने की लगातार कोशिश करता है, ताकि शैतान उन पर अपनी निर्मम कपटी शक्ति का अभ्यास न करे। उसने उनके साथ अपनी ही आवाज में, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से बोलकर बताने और विद्यमान व्यवस्था को अपने हाथों से लिखने की कृपा की, और यह धन्य कथन सत्य से सुबोधगम्य और आचरण से सहज प्रवृत्ति वाले उत्तम मार्गदर्शक के रूप में मनुष्य के सुपुर्द किए गए, क्योंकि शैतान बुद्धि को वश में करके उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और अपेक्षाओं से लगाव को दूसरे मार्ग पर ले आने को इतना तैयार रहता है कि उन्हें बुद्धि या मन में स्थिर करने और हृदय में अंकित करने के लिए अतिरिक्त लगन की आवश्यकता है। लोगों को परमेश्वर की अपेक्षाओं और चेतावनियों और बाइबल इतिहास के पाठ और तथ्यों संबंधित शिक्षा देने में धर्म के शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हें बच्चों की समझ के अनुरूप बनाकर साधारण भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह अभिभावकों और याजकों दोनों के कर्तव्यों का हिस्सा होना चाहिए कि वे देखें कि बच्चे पवित्र शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करें। अभिभावक अपने बच्चों को पवित्र पृष्ठों में मिलने वाले विविध प्रकार के ज्ञान में रुचि दिलाएं, लेकिन यदि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे परमेश्वर के वचन में रुचि रखें तो उन्हें उसमें स्वयं रुचि रखनी होगी। उन्हें वचन की शिक्षा से परिचित होना चाहिए और जैसे कि परमेश्वर ने इज़राइल को आज्ञा दी, उसके बारे में घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते बच्चों को सिखाना चाहिए। व्यवस्था विवरण 11 आयत 19। जो यह इच्छा रखते हैं कि उनके बच्चे परमेश्वर से प्रेम करें और उसका आदर करें, तो उन्हें उसकी सृष्टि की कृतियों और उसके वचन में प्रकट उसकी सामर्थ्य, उसकी महानता और उसकी अच्छाई की चर्चा करना चाहिए। बाइबल का प्रत्येक पद और प्रत्येक अध्याय परमेश्वर से मनुष्य के लिए संदेश है। हमें उसके सिद्धांतों को चिन्ह की तरह अपने हाथों पर बांधना चाहिए और आंखों के बीच टीके जैसे धारण करना चाहिए। यदि इसे पढ़ा गया और इसका पालन किया गया, तो यह दिन में बादल के स्तंभ के रूप में और रात में अग्नि के स्तंभ के रूप में परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व करेगा, जैसा कि इसराइलियों के लिए किया।